रेडियो तेहरान के श्रोताओं की सेवा में जहरा जैदी और साथियों का सलाम पहुंचे। आज के कार्यक्रम का आरंभ हम पवित्र कुरान के सूरह हूद की 45वीं, 46वीं और 47वीं आयतों की तिलावत और अनुवाद से कर रहे हैं। तिलावत का श्रेय प्राप्त कर रहे हैं श्री मीरजादा वाकिफी।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب بِإِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। और नूह ने अपने रब को पुकारा और कहा, हे रब, मेरा बेटा मेरे घर वालों में से है और निश्चय ही तेरा वादा सच्चा है और तू ही सबसे बड़ा हाकिम है। कहा, हे नूह, वो तेरे घर वालों में से नहीं, वो तो अशिष्ट कर्म है, तो तू ऐसी चीज का मुझसे सवाल न कर जिसका तुझे कोई ज्ञान नहीं है। मैं तुझे नसीहत करता हूँ कि तू अज्ञानी लोगों में से न हो जा। कहा, हे रब, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ इससे कि मैं तुझसे ऐसी चीज का सवाल करूँ जिसका मुझे कोई ज्ञान नहीं, और यदि तूने मुझे क्षमा न किया और मुझ पर तूने दया न की तो मैं घाटा उठाने वालों में से हो जाऊंगा।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। हमारे प्रसारण को आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9390 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। दोस्तों, पत्र व्यवहार के लिए हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। आज शुक्रवार है, जमादिस्तानी की 4, देमा की 17 और जनवरी की 7 तारीख। दोस्तों, हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप विश्व समाचार सुनेंगे, उसके उपरांत राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। राजनीतिक चर्चा के उपरांत आप अपना मनपसंद कार्यक्रम सुनेंगे पत्र संसार, और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा विज्ञान की डगर। तो दोस्तों, ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा, और अभी आप कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनेंगे। अब आप रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। विदेश मंत्री का कहना है कि वियना वार्ता अच्छी दिशा की ओर बढ़ रही है। इराक में स्वयंसेवी बलों की टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हो गया। भारत में मुसलमानों और सिख समुदाय के बीच झगड़ा कराने की कोशिश। अमरीकी राष्ट्रपति का कहना है कि ट्रंप ने कभी भी जनता की इच्छा का सम्मान नहीं किया। और अब आप विस्तार से अख्तर अब्बास से समाचार सुनिए। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि वियना में जारी वार्ता का आठवां चरण सही मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। हुसैन अमीर अब्दुल्लाइयान ने कहा कि पश्चिमी पक्ष अगर गंभीरता का प्रदर्शन करे तो एक अच्छा समझौता हो सकता है। उन्होंने कहा कि ट्रंप की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों को हम हटवाना चाहते हैं, विशेषकर वे प्रतिबंध जो परमाणु समझौते के विरुद्ध हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हम ऐसी गारंटी चाहते हैं जिसमें नए प्रतिबंध न लगें और लगे हुए प्रतिबंध हटाए जाएं। उन्होंने कहा कि ईरान का तेल निर्यात और उसकी आय तक तेहरान की पहुंच इसी गारंटी में शामिल है। हुसैन अमीर अब्दुल्लाइयान ने कहा कि इस समय वियना में जारी वार्ता में अच्छा समझौता तभी संभव है जब पश्चिमी पक्ष गंभीरता का प्रदर्शन करे। उन्होंने इस्लामिक गणतंत्र ईरान और सऊदी अरब के बीच हालिया वार्ता के संबंध में बताया कि इस वार्ता में सकारात्मक प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी समय संबंध सामान्य करने के लिए तैयार हैं। इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन के हवाई जहाज के गिरने की घटना की दूसरी बरसी के अवसर पर एक बयान जारी करके इस घटना में हताहत होने वालों के परिजनों को सांत्वना दी है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान जारी करके कहा कि इस घटना के तुरंत बाद ही ईरान में संबंधित संस्थाओं ने घटना की असली वजह बयान करते हुए आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों को पूरी सूक्ष्मता, पारदर्शिता और तेजी के साथ अंजाम दिया। विदेश मंत्रालय के बयान में आया है कि उड्डयन विभाग में तकनीकी ग्रुप ने घटना का जायजा लिया और अंतर्राष्ट्रीय विमानन कन्वेंशन की परिधि में तकनीकी जांच रिपोर्ट को संबंधित संस्थाओं और देशों के सहयोग से सही समय पर जारी कर दिया, जिसका इस जांच में शामिल देशों ने भरपूर स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने के बयान में आया है कि घटना की न्यायिक जांच में भी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी कानूनी और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों पर अमल करते हुए पूरी सावधानी और सूक्ष्मता के साथ जांच की गई और उसमें न्याय पर अमल किए जाने पर बल दिया गया। बयान में कहा गया है कि घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को निर्धारित राशि दे दी गई है। इराक में आतंकियों ने स्वयंसेवी बल हशद उशाइबी के कमांडर के घर पर हमला करके 5 लोगों को शहीद कर दिया। फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार बगदाद में सशस्त्र आतंकवादियों ने इराक के स्वयंसेवी बल हशद उशाइबी के नेता और कमांडर के घर पर हमला करके एक ही परिवार के 5 लोगों को शहीद कर दिया। इस आतंकवादी हमले में स्वयंसेवी बल के कमांडर को सिर में गोली लगी, जिसकी वजह से उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। अल अहद न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार हमलावरों की संख्या 4 थी। घटना की जांच शुरू कर दी गई है। दूसरी ओर राजधानी बगदाद के तहरीर स्क्वायर पर इराकी जनता ने अमेरिका के हाथों स्वयंसेवी बलों के जवानों की शहादत की दूसरी बरसी के अवसर पर प्रदर्शन किए। इराक में आतंकवादी अमरीकी सैनिकों के कारवां के रास्ते में धमाका हुआ है। साबरे न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार दीवानिया प्रांत में आतंकवादी अमरीकी सैनिकों के कारवां के रास्ते में बम धमाका हुआ, जिसकी जिम्मेदारी इराक के प्रतिरोधकर्ता गुट असहाब कहफ ने स्वीकार की है। अभी तक इस धमाके से होने वाले संभावित जानी व माली नुकसान का ब्यौरा सामने नहीं आया है। हालिया कुछ महीनों के दौरान अमरीका के सशस्त्र कॉन्वॉय पर इस प्रकार के हमले होते रहे हैं। अमरीकी सशस्त्र कॉन्वॉय पर होने वाले ये हमले ऐसे समय में अंजाम पा रहे हैं कि जब इराकी संसद ने देश में मौजूद अमरीकी सैनिकों के निष्कासन का बिल पास कर दिया है। हमलावर सऊदी गठबंधन ने यमन के अल हुदैदा प्रांत में अपनी पराजय का बदला लेने की कल्पना करते हुए एक बार फिर 125 हमले करके स्टॉकहोम युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन किया है। अल मसीरा चैनल की रिपोर्ट के अनुसार यमन पर हमला करने वाले सऊदी गठबंधन ने अल हुदैदा प्रांत में अपनी खोई हुई पोजीशन दोबारा हासिल करने के लिए एक बार फिर युद्ध विराम का उल्लंघन किया और पिछले 24 घंटे के दौरान 125 बार प्रांत के विभिन्न क्षेत्रों पर अंधाधुंध हमले किए। यमनी कमांडरों की ऑपरेशनल कमांड की ओर से जारी होने वाले बयान के अनुसार हमलावर सऊदी गठबंधन ने अल हुदैदा के विभिन्न आवासीय क्षेत्रों और गैर आवासीय क्षेत्रों पर ताबड़तोड़ हमले किए। अल हुदैदा प्रांत विशेषकर उसकी बंदरगाह को आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्व हासिल है और वहां पर युद्ध विराम के लिए अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रयास किए जा चुके हैं, किंतु सऊदी अरब इस प्रयासों को नुकसान पहुंचाते हुए निरंतर हमले करता रहा है। ये समाचार रेडियो तेहरान से प्रसारित किए जा रहे हैं। फिलिस्तीन के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हमास ने ऐलान किया है कि इस्लामी प्रतिरोधकर्ता गुट वेस्ट बैंक में ज़ायनी शासन के अपराधों और हमलावरों का हाथ बांधकर तमाशा देखते नहीं रहेंगे। हमास ने वेस्ट बैंक में इसराइली कॉलोनियों के निर्माण और ज़ायनी अपराध व हमलों के बारे में एक बयान जारी किया। हमास ने अपने बयान में कब्जा की गई जमीनों पर नई इसराइली बस्तियों के निर्माण के लिए ज़ायनी शासन के हालिया फैसले को खुला अतिक्रमण करार दिया। हमास ने अपने बयान में वेस्ट बैंक में कट्टरपंथी ज़ायनियों के हमलों का क्रम जारी रहने के खतरनाक परिणामों की बाबत सचेत किया और कहा कि प्रतिरोधकर्ता गुट वेस्ट बैंक में ज़ायनी शासन के अपराधों और हमलों पर मूक दर्शक बने बैठे नहीं रहेंगे। जिहाद इस्लामी आंदोलन के प्रवक्ता ने दो फिलिस्तीनी युवाओं की शहादत पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि फिलिस्तीनी राष्ट्र के खिलाफ ज़ायोनी कट्टरपंथियों और अतिक्रमणकारियों के अपराधों का अवश्य जवाब दिया जाएगा। वेस्ट बैंक में जिहाद इस्लामी के प्रवक्ता तारिक इज़्ज़ुद्दीन ने ज़ायोनियों के हाथों दो फिलिस्तीनी युवाओं की शहादत पर सांत्वना देते हुए कहा कि विभिन्न प्रकार के प्रतिरोध, जिनमें सशस्त्र संघर्ष भी शामिल है, अतिक्रमणकारियों के अपराधों का स्वाभाविक और सही जवाब है। गुरुवार की सुबह इसराइली सैनिकों ने उत्तरी वेस्ट बैंक के दक्षिणी नाबलस में स्थित बलाता कैंप में 21 वर्षीय युवक वकीर हशाश को शहीद कर दिया था। इसके साथ ही मुस्तफा यासीन नामक एक और फिलिस्तीनी युवा पर पश्चिमी वेस्ट बैंक के सफा नामक गांव में उस समय गाड़ी से रौंद कर शहीद कर दिया गया जब वो काम पर जा रहा था। मुंबई पुलिस ने बताया है कि बुलीबाई ऐप में सिख समुदाय से संबंधित नामों का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए किया गया है कि यह ट्विटर हैंडल सिख समुदाय के लोगों द्वारा बनाए गए हैं। बुलीबाई ऐप के जरिए जिन महिलाओं को निशाना बनाया गया वे मुस्लिम थी, इसलिए ऐसी संभावना थी कि इससे दो समुदाय के बीच दुश्मनी पैदा हो और सार्वजनिक शांति भंग हो। मुंबई के पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले ने बुलीबाई ऐप को लेकर मीडिया को संबोधित किया। मुंबई पुलिस ने बुधवार को कहा कि बुलीबाई ऐप के सिलसिले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं की तस्वीर ऑनलाइन पोस्ट करके उन्हें बदनाम किया जा रहा था। पुलिस ने यह भी दावा किया कि ऐसा लगता है कि आरोपियों ने अपने ट्विटर हैंडल में सिख समुदाय से संबंधित नामों का इस्तेमाल किया, जिससे लोगों को गुमराह किया जा सके और आरोपियों की पहचान न होने पाए। भारत के दो दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के गंगा घाटों के चारों ओर एक खास तरह के पोस्टर लगा रहे हैं, जिसमें गैर हिंदुओं को इन घाटों पर न जाने की चेतावनी दी गई है। इन पोस्टरों पर बड़े अक्षरों में लिखा है, प्रवेश प्रतिबंधित, गैर हिंदू। اس کے علاوہ لکھا ہے کہ ماں گنگا، کاشی کے گھاٹ اور مندر سناتن دھرم بھارتی سنسکرتی، شردھا اور آستھا کے پرتیک ہیں۔ جن کی آستھا سناتن دھرم میں ہو ان کا سواگت ہے، نتا یہ کھیتر پکنک اسپاٹ نہیں ہے۔ ان سنگھٹنوں کے نیتاؤں نے سوشل میڈیا پر ایسے پوسٹروں کو لگاتے ہوئے اپنی تصویریں بھی ساجا کی ہیں۔ امریکی راشٹرپتی جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے جنتا کی اچھا کا کبھی بھی سمان نہیں کیا۔ امریکی کانگریس کی عمارت پر ہونے والے حملے کی پہلی برسی پر اس دیش کے راشٹرپتی نے اپنے ٹی وی سمبودھن میں کہا کہ امریکی اتہاس میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ چناؤ میں ہار جانے کے باوجود ایک راشٹرپتی نے اپنی پراجے کو سویکار نہیں کیا، بلکہ ستہ کے شانتی پورن ہستانترن میں بھی اس نے بادھائیں ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ اسی بیچ ایک ہنسک بھیڑ کانگریس کی عمارت میں گھس گئی، لیکن ان کو پراجے کا منہ دیکھنا پڑا۔ امریکی راشٹرپتی کا کہنا تھا کہ آج ہمیں وشواس حاصل کرنا چاہیے کہ بھوش میں ایسا کبھی نہ ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ لوگ سنسد سبھاپتی کو دھمکا رہے تھے۔ بائیڈن نے بتایا کہ ہم اس بات کے بھی ساکشی تھے کہ لوگوں کو بھڑکانے والا راشٹرپتی حملے کے سمے راشٹرپتی بھون کے ڈائننگ روم میں بیٹھ کر ٹی وی پر سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ 6 جنوری کو امریکی کانگریس پر حملہ کرنے والوں کے سمرتھن میں بہت سے لوگ واشنگٹن میں اکترت ہیں۔ امریکہ میں 6 جنوری کی ہنسا میں لپت لوگوں کا سمرتھن کرنے کے ادیش سے سینکڑوں لوگ واشنگٹن میں اس استھان پر اکترت ہوئے جہاں ان کو بندی بنا کر رکھا گیا تھا۔ یہ لوگ ایک کاریکرم آیوجت کر رہے ہیں جس کا شیرشک ہے 6 جنوری والوں کے لیے نیائے۔ امریکہ کے ایک ادھیکاری نے بتایا کہ کانگریس کی عمارت پر حملہ کرنے کے آروپ میں 39 لوگوں کو جیل میں رکھا گیا ہے۔ پردرشنکاریوں کی یہ بھیڑ وہیں پر جمع ہوئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے انتراشٹریہ سماچار سماپت ہوئے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔
راجنیتک چرچا۔
تو آپ کا سواگت ہے کارکرم راجنیتک چرچا میں، میں ہوں احمد عباس۔ کارکرم راجنیتک چرچا میں ہم بات کریں گے آذربائیجان کی راجدھانی باکو میں آیوجت ہونے والے وشیش کارکرم کی۔ کارکرم راجنیتک چرچا میں ہم فلسطین کے تازہ حالات پر بھی ایک نظر ڈالیں گے۔
شہیدانی فلسطینیانی و اصابات الموت۔
بھارت نینترت کشمیر میں کیندر سرکار کے فیصلوں کے ویروت میں 2 راجنیتک دلوں نے آواز اٹھائی ہے۔
یہ شکایتیں یہ صرف 2 جگہ کی نہیں ہیں، یہ ہر جگہ یہ شکایتیں ہیں، اور یہ خود گورنمنٹ مان رہی ہے کہ ہم نے ایسا کیا۔
یہ وشے بھی کارکرم راجنیتک چرچا میں شامل رہے گا۔ تو چرچا کے وشے یہی ہیں، آرمبھ کرتے ہیں باکو کے وشیش کارکرم سے۔ آذربائیجان کی راجدھانی باکو میں پیغمبر اسلام کی سپتری حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور مہان کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کو شردھا دینے کے لیے ایک وشیش کارکرم کا آیوجن کیا گیا۔ باکو سے آئی آر آئی بی کے لیے پرویز غیاسی کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں قائم رضوی۔
حضرت فاطمہ زہرا کی شہادت اور مہان کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی دوسری برسی کے افسر پر پیغمبر اسلام اور ان کے پوتر پریجنوں سے محبت کرنے والے شردھالوؤں کی شرکت سے ایک کاریکرم آیوجت کیا گیا۔ آذربائیجان میں اسلامی گڑتنت ایران کے راجدوت سید عباس موسوی نے کاریکرم کے میزبان کے روپ میں بھاشن دیا. اس دیش کے لوگوں میں پیغمبر اسلام اور ان کے پوتر پریجنوں کے پرتی پائی جانے والی شردھا کا الیکھ کیا. انہوں نے کہا کہ پیغمبر اسلام اور ان کے پوتر پریجنوں کے شردھالو ہمیشہ شانتی کا ہی سندیش دیتے آئے ہیں. ایک استھانی مہیلا نے کہا کہ حضرت فاطمہ زہرا دنیا کی ساری عورتوں کے لیے آدرش ہیں. ان کی مہانتا کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے انہیں پتا کی ماں کی اپادھی دی ہے.
حضرت فاطمہ بتن شیلر چھ بتن قادن لار چھ
وہ ہم سب کے لیے آدرش اور نمونہ ہیں. ہم سبھی کو خاص طور پر امام زمانہ کو اس شہادت پر سمویدنا ویکت کرتے ہیں.
کنتلرمزدا شہرلر رایونلرمزدا خانم زہرانن آزادارلیگی قورونور.
راجدھانی باکو کے ایک بزرگ حاجی نوری نے سماروہ میں بھاشن دیتے ہوئے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے آذربائیجان شیعوں کی دھرتی بنی ہے. یہ محبت کا بہت بڑا تحفہ ہے. اس کارکرم میں جو ایران کے دوتاواز کی اور سے آیوجت کیا گیا, آذربائیجان گڑ راج میں ایران کی اسلامی کرانتی کے سروچ نیتا آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی کے اپ پرتندھی میر سلام نے کہا ہے کہ ولایت کی راہ پر چلنا اچھے انجام کی گارنٹی ہے اور حضرت زہرا نے اس مارگ میں اپنی ساری شمتائیں استعمال کی. اس کارکرم میں الحاج سلیمانی جنہیں میں جانتا ہوں نام کی کتاب کا اناورن کیا گیا. اس کارکرم میں شہید سلیمانی سے سمبندھت چنندہ کلاکرتیوں کو پرسکرت بھی کیا گیا. باکو سے IRIB کے لیے پرویز غیاسی کی رپورٹ.
فلسطین میں ہونے والی جھڑپوں میں دو فلسطینی شہید ہو گئے اور کئی انیہ گھائل ہوئے ہیں. فلسطین سے IRIB بیورو کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں اختر عباس.
شہیدانی فلسطینیانی و اصابات الوقت.
پچھلے کچھ گھنٹوں کے بھیتر اسرائیلی قبضے والے علاقوں میں دو فلسطینی جوان شہید ہو گئے. ایک پوروی نابلس میں جھڑپوں کے دوران اسرائیلی سینکوں کی گولی لگنے سے اور دوسرا پشچمی رام اللہ میں ایک چرمپنتھی زائونی کے حملے میں جسے چرمپنتھی زائونی نے اپنی گاڑی سے کچل دیا. شہید فلسطینی باقر حشاش کے بھائی کا کہنا ہے کہ مجھے صحیح پتا نہیں کہ کب یہ گھٹنا ہوئی, لیکن تڑکے 2 بجے کے آس پاس جھڑپ کی آواز سنائی دی. فلسطینیوں اور زائنی سینکوں کے بیچ سیدھی جھڑپیں ہوئی جس کے دوران میرا بھائی شہید ہو گیا.
وتوعد المتحدث باسم الحرب.
حماس کے پروکتا حازم قاسم نے کہا کہ ان فلسطینیوں کے خون سے ویسٹ بینک میں انتفاضہ آندولن ادھک مضبوط ہوگا. انہوں نے کہا کہ آزادی مل جانے تک فلسطینی یوا اپنا لگاتار سنگھرش جاری رکھیں گے.
وفی رام اللہ شہید شاب مصطفی یاسین فلنا
میں. رام اللہ میں ایک چرمپنتی زائونی کے حملے میں مصطفی یاسین نامک ایک یوا شہید ہو گیا. وہ 1948 کے اویدھ ادھیکرت علاقوں کی اور کام کے لیے جا رہا تھا.
وفی شمال الضفا اسی.
ویسٹ بینک کے اتری علاقوں میں بھی اسرائیلی سینکوں کے حملوں میں دو فلسطینی گھائل ہو گئے. فلسطینی سوتر بتاتے ہیں کہ ویسٹ بینک میں اسرائیلی سینکوں نے کم سے کم 17 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے. فلسطین سے IRIB بیورو کی رپورٹ.
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے. اور آپ سن رہے ہیں کارکرم راجنیتک چرچا. سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش. کارکرم راجنیتک چرچا.
بھارت نینترت کشمیر کی راجنیتک پارٹیوں نیشنل کانفرنس اور PDP نے کیندر سرکار کے فیصلوں پر اپنا ویرودھ جتایا ہے. بیورے کے ساتھ ہمارے سنواد داتا سپتے محمد حسن.
نیشنل کانفرنس کے مہا سچیو علی محمد ساگر نے کہا ہے کہ نئی دہلی کی موجودہ رجیم یو ٹی کی آڑ میں جو نرنے پاس کر رہی ہے اس سے جموں کشمیر کے ہتوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، پرنتو ہم نے انہیں سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے، جب تک اس کا نرنے نہیں آتا ہے تب تک ہم کو یہ سہنا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ یو ٹی رجیم ان کے انوسار جو کچھ ان سے بن پاتا ہے ایسے قانون لائے جا رہے ہیں جو جموں کشمیر کے جنتا کے ہت میں نہیں ہیں. علی محمد ساگر نے کہا ہے کہ ان کا دل اس کا مقابلہ کرے گا اور جس سمے ہمارے رائٹس بحال ہوں گے یہ سب قانون خود بخود سماپت ہو جائیں گے. انہوں نے اس اوسر پر پترکاروں کے ساتھ وارتا کرتے ہوئے کہا
اور پنڈی سے ختم کیا گیا پارلیمنٹ میں جس طریقے سے کیا گیا وہ سب کو پتا ہے جس کو ہم نے چیلنج کیا سپریم کورٹ میں، اور اس آرٹ میں بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں تو اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں جب تک میں اس میں بیسیکلی یہ آ جائے کہ 370 اور پنڈی سے کے تحت جو مراد اور جو فیصلتیاں اور جو رائٹرز کانسٹیٹیوشن رائٹرز بنتے ہیں جموں کشمیر کے لوگوں کے ان کو ٹچ نہیں کیا جائے گا، ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، تب تک یہ شکایتیں ہو جائیں گی. یہ شکایتیں یہ صرف دو جگہ کی نہیں ہیں، یہ ہر جگہ یہ شکایتیں ہیں اور یہ خود گورنمنٹ مان رہی ہے کہ ہم نے ایسا کیا کیونکہ وہ انڈر یو ٹی ایکسرسائز کر رہے ہیں، اپنی حکومت چلا رہے ہیں، اس کے تحت وہ بہت سی چیزیں ایسے دے رہے ہیں جو ہمارے بیسک کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے. حالانکہ یہ کیس سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، ہونا تو چاہے یہ تھا کہ جب تک اس میں ڈیسیجن دیا جائے گا سپریم کورٹ کا، آنریبل کورٹ کا، وہ اس میں کوئی انٹریم آرڈر ہو تب وہ پھر وہ کاروائی کریں سیوی آر دیٹ وے، لیکن ایسا نہیں کیا جا رہا ہے. انسپائر آف دا فیکٹ کہ کیس از پینڈنگ بفور آنریبل سپریم کورٹ کاروائیاں کی جا رہی ہیں، فیصلے لیے جا رہے ہیں، وہ گورنمنٹ کا کام ہے. دیکھیے اس بارے میں ہم نے بار بار بات کی ہے، ہم نے اپنا پروٹیسٹ درج کیا ہے، پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ اٹھایا ہے، یہ چیزیں ہم اٹھا رہے ہیں، باقی کیا ہوگا وہ.
اس بیچ پی ڈی پی مہیلا ادھیکش محبوبہ مفتی نے ایک بار پھر کہا ہے کہ نئی دہلی کو چاہیے کہ کشمیر سمسیا کے سمادھان کے لیے آگے آ جائیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے بار بار نئی دہلی کو یہ سمجھانے کا پریاس کیا ہے کہ کشمیر سمسیا کو سلجھانے سے بھارت ترقی کے ہر راہ کراس کر سکتا ہے، پرنتو ہماری بات نہیں سنی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ لینڈ کے جتنے بھی قانون لائے گئے ہیں وہ جموں کشمیر کے ہت کے ورودھ میں ہیں اور ان کا دل اس کا ورودھ جاری رکھے گا. الیکھنیہ کہ محبوبہ مفتی کے پتا مفتی محمد سعید کی برسی کے اوسر پر ایک سماروہ آیوجت ہوا جس میں محبوبہ مفتی اپنا بھاشن دے رہی تھی. اس بیچ جموں کشمیر میں ہنسک گھٹناؤں کا کرم بھی جاری ہے. سینٹرل کشمیر کے چاڈورا میں بھارتی سرکشا بلوں اور الگاؤں وادیوں کے بیچ ایک مڈ بھیڑ میں 3 الگاؤں وادی چھاپہ ماروں کے ہتھات ہونے کی سوچنا ہے، جن کے نینترن سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کرنے کا بھی دعویٰ کیا گیا. سپتی محمد حسن، ریڈیو تہران، سری نگر.
اور اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا کا کارکرم سماپت ہوتا ہے. یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے. شروتاؤ، اب پرستت ہے کارکرم پتر سنسار، جس کے بعد آپ سنیں گے سبھا کا انتم کارکرم وگیان کی ڈگر.
پتر سنسار. دوستو، کارکرم پتر سنسار میں آپ کا سواگت ہے. اپنی دیدی مریم مہر دادی
اور بھیا احمد عباس کا سلام سویکار کیجیے.
دوستو، ہمیں آشا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے سکشل ہوں گے اور اپنا من پسند کارکرم سننے کے لیے تیار ہوں گے.
اور آج بھی کارکرم کی شوبھا بڑھائیں گے، آپ کے ای میل، کمنٹ اور ساتھی دیدی شامل کریں گے، کچھ انے چیزیں بھی.
جی، تو سب سے پہلے شروع کر رہے ہیں ای میلوں سے. ضلع مظفر پور کے بھارت ریڈیو شروتا سنگھ سے رجنیش کمار لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کے ہندی سیوا کے احمد عباسی اور مریم مہرداد جی کو نمن اور سلام. اور آج کل آپ کے پرسارن ہم نیمت रूप से सुन रहे हैं और रेडियो पर प्रसारण भी साफ सुनाई दे रहे हैं। 17/12/2021 शुक्रवार को सामायिक चर्चा के साथ साथ पत्र संसार विज्ञान की डगर का कार्यक्रम सुना, जिसमें पत्र संसार के तहत आनंद मोहन जी और उदय भान ठाकरे जी के पत्रों में लिखे गए विचार को सुना और साथ ही साथ विज्ञान की डगर के तहत विज्ञान के क्षेत्र में ईरान में हो रही तरक्की और थायराइड की समस्या के बारे में चर्चा की गई, जो मुझे काफ़ी ज्ञानवर्धक लगी। इसके लिए आप सभी को कोटिशः धन्यवाद, लेकिन आपसे अनुरोध है कि जो श्रोतागण आपके साथ पत्र व्यवहार रखते हैं उनको यादगार के रूप में रेडियो तेहरान का प्रमाण पत्र दिया जाए तो बेहतर रहेगा। और इन्होंने आगे अपना मोबाइल नंबर दिया है, मैं मोबाइल नंबर भी बता दूं ताकि हमारे दूसरे श्रोता है वो भी इनसे संपर्क में रहें। तो इनका मोबाइल नंबर है 09939607833।
जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस विस्तार से आपने कार्यक्रम के बारे में बात की। इसके साथ ही आपने कार्यक्रम की जो सूची है उसके बारे में बताया। इससे ये पता चलता है कि कितने ध्यान से कितने रुचि से कार्यक्रमों को सुनते हैं और आभार आपका कि इतनी दिलचस्पी से इतने विस्तार से आप कार्यक्रमों के बारे में अपनी टिप्पणी और अपना विचार भेजते हैं। निश्चित रूप से इससे एक दिशा निर्देश मिलता है, इससे एक मदद मिलती है कि किस तरह कार्यक्रम को आगे ले जाया जाए। और दीदी निश्चित रूप से चूंकि आपने अपना ईमेल अपना फ़ोन नंबर भेजा है तो आपके विचार भी अगर आप को रुचि रही तो शामिल करने की कोशिश की जाएगी। विचार तो यानी आपने जो ईमेल भेजा हो तो है ही, लेकिन आपकी आवाज़ शामिल करने की कोशिश की जाएगी और दीदी ये कोशिश करेंगी। इसके लिए अलबत्ता अच्छी क्वालिटी में अगर आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप के माध्यम से हमें भेज सकें तो ये बहुत अच्छा रहेगा।
जी मुस्तकीम मुतवा, ग्रेट मीडियम वेव रेडियो रिसेप्शन, ईरान तेहरान हिंदी सर्विस, लव फ्रॉम भुज गुजरात इंडिया। और आगे उन्होंने लिखा है, मुझे रेडियो ईरान हिंदी सेवा बहुत पसंद है। ये हमारे नए श्रोता अभी शामिल हुए हैं मुस्तकीम मुतवा, और ये हमारे व्हाट्सएप पर भी
अपने विचार पहुंचाते रहते हैं। मुझे लगता है आप ये कहना चाहती हैं।
जी बिल्कुल सही कहा।
बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका कार्यक्रम पत्र संसार में, साथ ही हमारी इस समय की सभा में भी कुल पूरी तरह से रेडियो हिंदी के अंदर आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप जुड़े रहेंगे, कार्यक्रमों को सुनेंगे, कार्यक्रमों के बारे में विचार देंगे, श्रोताओं तक भी आपके विचार पहुंचाए जाएंगे। आप जो विचार हमें ऑडियो नोट की शक्ल में अगर भेज सकते हैं तो
भैया अब बारी है ईरानी संस्कृति से जुड़ी एक खबर की, और आज हम आपको तक्काब कालीन के बारे में बता रहे हैं।
जी
ईरान का कहना है कि पश्चिम अजरबैजान प्रांत के तक्काब शहर में निर्मित हाथ से बुने हुए कालीनों को VIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पंजीकृत किया गया है।
जी
पश्चिम अजरबैजान के उद्योग खनन और व्यापार संगठन के प्रमुख गुलाम रजा बाबाई ने मंगलवार को कहा है कि हम वर्षों से अफशार तकाब आर्यन कारपेट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकृत करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस वर्ष ये महत्वपूर्ण परिणाम संगठन के निरंतर प्रयासों से प्राप्त हुआ है और आने वाले दिनों में अफशार तकाब कालीन के विश्व पंजीकरण का प्रमाण पत्र राष्ट्रीय और प्रांतीय अधिकारियों की उपस्थिति में अनावरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम अजरबैजान प्रांत देश में हाथ से बुने कालीनों के उत्पादन केंद्रों में से एक है, जहां 72,000 बुनकर सालाना 290,000 वर्ग मीटर का उत्पादन करते हैं और उन्हें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भेजते हैं। तकाब के हाथ से बुने हुए कालीन अपनी गुणवत्ता और टिकाऊपन के लिए बहुत प्रसिद्ध है और इन्हें आयरन कारपेट्स भी कहा जाता है। अधिकारियों का कहना है कि WIPO पंजीकरण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरानी सामानों की प्रामाणिकता और पहचान को बनाए रखने में मदद करेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण खबर के लिए।
और श्रोता, अब बारी है आपके कमेंट्स की, तो देखते हैं कि दीदी ने कौन से कमेंट्स चुने।
जी, मैं आयतुल्ला खमेनी का बड़ा फैन हूँ, जल्द ही तेहरान की यात्रा करूँगा, वेनेजुएला के राष्ट्रपति। इस पर मौलाना सैयद सैफ अब्बास लिखते हैं, USA में हर दिन हालात बदतर और बदतर हो जा रहे हैं, अब इस साम्राज्य का अंत निकट है। अधिकांश नहीं जानते कि वहाँ के हालात इससे भी बदतर हैं और बाइडन से ये उम्मीद न करें कि आपको सच बताएंगे। जब ये सब क्रैश हो जाएगा तो USA के दोस्त कम और दुश्मन ज़्यादा होंगे।
जी, वैसे मादोरो की जो टिप्पणी है आयतुल्लाह खामेनेई के बारे में, ये अलमियादीन टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये बातें कहीं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मुझे इस बात पर खुशी है कि जनरल कासिम सुलेमानी वेनेजुएला है और वेनेजुएला का उन्होंने दौरा किया और मुझे उनसे परिचित होने का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है। एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू है, एक अच्छा खासा लंबा भी है, जो अलमियादीन टीवी चैनल, लेबनान का टीवी चैनल है, उसके ज़रिए किया गया है और प्रसारित हो रहा है। टिप्पणी का जहाँ तक सवाल है, तो इस पर जो टिप्पणी सैफ साहब की तरफ से आई है वो अमेरिका के बारे में है। मादोरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, जो कि लैटिन अमेरिकी देश है। ये उन देशों में है जो अमेरिकी अत्याचार का निशाना बने हैं। अमेरिका ने इन देशों पर, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने इन देशों पर अत्याचार किए हैं और बहुत लंबे समय तक अत्याचार किए हैं। ये एक लंबी कहानी है। आज भी अमेरिका इन देशों पर अपना वर्चस्व कायम रखना चाहता है, लेकिन इन देशों में प्रतिरोध देखने में आ रहा है। प्रतिरोध करने वाले देशों में वेनेजुएला, बोलीविया और क्यूबा जैसे देश आगे आगे हैं।
परमाणु वार्ता का 8वां चरण परिणाम को लेकर सकारात्मक माहौल बनाने की जरूरत, इस पर सैयद नासिर लिखते हैं, ये वार्ता के बजाय पूछताछ वार्ता है। उन वार्ताओं में यूरोपीय एजेंट अमेरिका और इसराइली के नाजियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी कई बार ऐसे संकेत और लक्षण दिखा चुके हैं। बहादुर ईरान को कुचलने की कोशिश करने का उनका एक ही उद्देश्य है। ट्रंप द्वारा JCPOA की हत्या के पहले दिन से यूरोपीय कमजोरियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। कल ही यूरोपीय लोगों ने वार्ता पर एक रेच फेंका, फिर अगर ये तोड़फोड़ की साजिश नहीं है तो रेंच का और क्या मतलब हो सकता है।
देखिए, वार्ता के हालात के बारे में बात कर रहे हैं अपनी टिप्पणी में हमारे ये पाठक या श्रोता, जो भी कह लें। वार्ता वियना में जारी है, 8वां दौर है। इस्लामी गणतंत्र ईरान पूरी मजबूती के साथ ठोस और दो टूक अंदाज में इस वार्ता में शामिल हुआ है। निश्चित पॉइंट्स इस्लामी गणतंत्र ईरान की ओर से रखे गए हैं जो बहुत स्पष्ट हैं। वो है कि ईरान पर लगी पाबंदियां हटें और इस तरह हटें कि ईरान उसका सत्यापन कर सके और अमेरिका इस बात की गारंटी दे कि वो समझौते में अगर दोबारा शामिल होता है तो एक बार फिर समझौते से बाहर नहीं निकलेगा। इस तरह की बड़ी स्पष्ट बातें और पॉइंट रखे गए हैं। देखना यह है कि नतीजा क्या निकलता है।
तो भैया, अब चलते हैं अपने एक दोस्त के विचार सुनने, और ये है हमारे पुराने श्रोता धीरज प्रजापति। तो आइए इनके विचार सुनते हैं।
जी
नमस्कार, मैं धीरज प्रजापति। ईरान रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो हमको माय फ्रेंड ग्रुप से रूबरू कराते रहते हैं। हमारे और भी जो जुड़े हुए हैं वो सभी सुनते हैं आपके न्यूज़ को और आपके समाचार को जो भेजते हैं, और बहुत अच्छा है ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहें और हम भी आपको अपने संदेशों के ज़रिए आपसे जुड़े रहेंगे। कोई भी एक अलग नहीं है, सब एक हैं, एक राष्ट्र है, एक देश है, सारा कुछ सब एक जैसा है, सबको एक जुटता बना के रखनी चाहिए, ना कि आए दिनों जैसे ये अभी पंजाब में घटना हुआ है गुरुद्वारे में दो, और इधर पाकिस्तान में है, इधर जगह जगह पे होता है, इनको समाप्त करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें अच्छी नहीं होती है, क्योंकि सबको एक दिन नहीं तो एक दिन सबको अपने उड़ यहाँ पे नहीं रहना है, दूसरी जगह को चल जाना है, किसी को पता नहीं कौन कहाँ जाएगा, क्या रूप लेगा, कैसा रहेगा, मगर शांति बना के रखें और सब एकजुटता रखें तो अच्छा रहेगा। हालांकि एक लोग एकजुटता भी क्यों रखेंगे बना के, क्योंकि वो तो इसी में ही अपना टाइम व्यर्थ करना चाहते हैं कि एक दूसरे से लड़ाई करो, उसका ज़मीन जायदाद या उसकी बॉर्डर को अपने हैसियत में रखो, अपने उसमें करो, तो ये देखो अच्छा नहीं होता है। सभी को सोचना चाहिए, हमारे से छोटे बड़े जो साथी हैं, या हमारे जो वुमेंस के लिए बोला जाता है कि अभी हमारे भारत में कर्नाटक में कांग्रेस के एक नेता ने बोला, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो ये असर बहुत पड़ता है, अपने देश की सभ्यता को नुकसान पहुंचाया जा जाता है, और ये चीज़ें अच्छा नहीं होता है, आगे भी आगे से ध्यान रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दीदी अब समय पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, इसलिए हम श्रोताओं से अनुमति ही ले सकते हैं। तो श्रोताओं अगली मुलाकात तक अहमद अब्बास और दीदी मरियम मेहरदादी को अनुमति दीजिए। खुदा हाफिज़।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताज़ा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। विज्ञान की डगर।
दोस्तों कार्यक्रम विज्ञान की डगर की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में भी हम विज्ञान के क्षेत्र में ईरान और दुनिया में होने वाली प्रगति के विषय पर चर्चा करेंगे। मरियम मेहरदादी और रविश जैदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों ईरान के तेहरान विश्वविद्यालय के मैकेनिकल इंजीनियर संकाय के शोधकर्ताओं ने पेरिस विश्वविद्यालय के सहयोग से दिल की नाड़ियों के लिए बायोडिग्रेडेबल लिविंग कंपोजिट स्टेंट की नई पीढ़ी बनाने में सफलता हासिल कर ली है। एंजियोप्लास्टिक एक ऐसी सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें हृदय की मांसपेशियों तक ब्लड सप्लाई करने वाली रक्त वाहिकाओं को खोला जाता है। मेडिकल भाषा में इन रक्त वाहिकाओं को कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। डॉक्टर अक्सर दिल का दौरा या स्ट्रोक जैसी समस्याओं के बाद एंजियोप्लास्टी का सहारा लेते हैं।
इस प्रक्रिया को परक्यूटेनियस ट्रांसुमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी भी कहा जाता है। कई मामलों में डॉक्टर एंजियोप्लास्टी के बाद कोरोनरी आर्टरी स्टेंट भी रक्तवाहिकाओं में डालते हैं। यह स्टेंट नसों में रक्त प्रवाह को फिर से दुरुस्त करने का काम करता है। दिल का दौरा पड़ने के बाद आदर्श रूप से 1 से 2 घंटे के भीतर मरीज की एंजियोप्लास्टी हो जानी चाहिए।
हेल्थलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक 1 घंटे के भीतर मरीज को एंजियोप्लास्टी मिलने से मौत का जोखिम कम हो सकता है। इसे जितना जल्दी किया जाए मरीज के हार्ट फेलियर का खतरा उतना कम होता है। एंजियोप्लास्टी 3 प्रकार की होती है, बैलून एंजियोप्लास्टिक, लेजर एंजियोप्लास्टी और एथेरेक्टोमी एंजियोप्लास्टी।
दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि स्टेंट क्या है। स्टेंट मेटल से बना ट्यूब होता है। इस ट्यूब की मदद से धमनी को खुले रहने में मददगार होती है। डॉक्टर आमतौर पर इस छोटी सी ट्यूब को धमनियों के अंदर डालते हैं, जिससे ब्लॉक हुई रक्त वाहिकाओं को खुला रखने में मदद होती है। उस ट्यूब को स्टेंट कहते हैं। इसका मुख्य कार्य रक्त प्रवाह या अन्य तरल पदार्थों को आगे पहुँचाना है। अगर हृदय तक सही तरीके से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है तो दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा शुरू हो सकता है। इसीलिए अगर हृदय संबंधी परेशानी महसूस हो तो इस परेशानी को ज़्यादा देर तक इसे टाले नहीं, क्योंकि ऐसा करने से स्थिति बिगड़ सकती है। स्टेंट क्या है, इसे समझने के बाद इसका कैसे उपयोग किया जाता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं।
हार्ट की बीमारी जिसको हो उसे स्टेंट की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। जब धमनी में किसी वजह से ब्लड का फ्लो प्रभावित होता है तो ब्लड क्लॉट बनने की संभावना अधिक हो जाती है। धमनी में आई रुकावट को हटाने के लिए एंजियोप्लास्टी का सहारा लिया जाता है। एंजियोप्लास्टी में एक ट्यूब का यूज़ किया जाता है। इस ट्यूब में एक बैलून को जोड़ा जाता है और फिर इसे धमनी तक ले जाया जाता है। जिस कारण से धमनी में ब्लॉकेज हुआ है उसे बैलून की हेल्प से हटाया जाता है। ऐसा करने से ब्लॉकेज हट जाता है, लेकिन भविष्य में ब्लॉकेज की संभावना अधिक हो जाती है, इसलिए उस स्थान में स्टेंट को लगाया जाता है। स्टेंट भविष्य में धमनी के ब्लॉकेज होने की संभावनाओं को कम करने का काम करता है।
दोस्तों, अगर बीमारी की शुरुआत में ही पता चल जाए कि मरीज को स्टंट की जरूरत है और उसी समय उचित स्टंट बना लिया जाए, अर्थात बच्चों का स्टंट जो जल्दी ठीक हो जाए और बूढ़े का स्टंट जो देर से ठीक हो, तो ये दिल के मरीजों के लिए बेहतर होता है। ये ईरान में होने वाले एक बेहतरीन शोध का परिणाम है। रिपोर्टों में बताया गया है कि हार्ट अटैक से हर साल 1,90,00,000 से अधिक लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं और इस बीमारी से दुनिया में सबसे अधिक मौत होती है।
दोस्तों, मदरिस टीचर ट्रेनिंग के शोधकर्ताओं ने नैनो आकर्षण बनाया जो पर्यावरण में सुगंधित प्रदूषकों की थोड़ी मात्रा का पता लगाने के लिए प्रयोग होता है। ये प्रदूषण कैंसर का कारण बनते हैं और इंसान के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। यही वजह है कि पर्यावरण में इनका पाया जाना चिंताजनक और खतरे का कारण बन जाता है। इस परियोजना के आविष्कारकों और शोधकर्ताओं का कहना है कि ये चीज़ पर्यावरण में फैले प्रदूषण की मात्रा का पता लगाने में सहायक सिद्ध होती है।
दोस्तों, अब हम आपको रूमेटिक डिसीज या आमवाती रोग के बारे में बताएंगे। रूमेटिक हार्ट डिसीज एक ऐसी स्थिति है जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस नामक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ ऑटो इम्यूनिटी के कारण होता है, जो रोमैटिक बुखार और गले के संक्रमण का कारण बनता है। यदि बुखार या संक्रमण अनुपचारित हो जाता है या उसका इलाज किया जाता है तो ये रोमैटिक हार्ट डिसीज का कारण बनता है।
जीवाणु संक्रमण के कारण हृदय के वाल्वों की बार बार सूजन की बीमारी की विशेषता है। वाल्वों पर सूजन या घाव प्रकृतिशील और स्थायी होते हैं। झुलसने पर वाल्व नीचे संकुचित हो जाता है, जिससे रक्त का रिसाव होता है। जब ये इन वाल्वों के माध्यम से एक हृदय कक्ष से दूसरे में प्रवाहित होता है, यदि वर्षों से अनुपचारित रखा जाए तो ये हृदय गति रुक जाती है।
रूमेटिक हृदय रोग रूमे बुखार के कारण होता है, जो ज्यादातर 5 और 15 वर्ष की आयु के बच्चों में होता है। आमवती हृदय रोग के सामान्य लक्षण बुखार, दर्दनाक सूजन, लाल और कोमल जोड़ों, त्वचा के नीचे न्यूडल्स, छाती में असुविधा और विशेष रूप से लेटते समय सांस की तकलीफ है। रूमेटिक हृदय रोग का निदान करना मुश्किल हो सकता है। संक्रमण के बावजूद लक्षण बहुत हल्के हो सकते हैं कि रोगी डॉक्टर से मिलने नहीं जाता है। जब लक्षण गंभीर हो जाते हैं तो मरीज जांच के लिए जाते हैं या रक्त परीक्षण की सिफारिश की जाती है।
नियमित शारीरिक परीक्षा दिल की गड़गड़ाहट को प्रकट कर सकती है, जो रक्त के रिसाव के कारण होती है। रोमैटिक हृदय रोग के निदान के लिए अनुशंसित अन्य परीक्षण इकोकार्डियोग्राम इको, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी, कार्डियक एमआरआई, छाती एक्सरे और ब्लड टेस्ट होता है। उपचार में संक्रमण को कम करने और सूजन को कम करने के लिए एस्पिरिन के साथ शुरू में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करना शामिल है।
स्टेरॉइड भी दिया जा सकता है अगर सूजन एस्पिरिन के साथ नहीं हो जाती है। इसके बाद रोगी को संक्रमण और संबंधित लक्षणों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए डॉक्टर द्वारा निर्धारित एंटीबायोटिक लेते रहना चाहिए। यदि व्यापक उपचार के बाद भी वाल्व की मरम्मत नहीं होती है और सुनने की गड़बड़ाहट बनी रहती है तो वाल्व को बदलने के लिए सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि रूमेटिक हार्ट डिसीज का इलाज कैसे किया जाता है।
तो दोस्तों, रूमेटिक हार्ट डिसीज के लिए उपचार मुख्य रूप से रूमेटिक बुखार को रोकने के लिए ध्यान केंद्रित करता है। ये रूमेटिक बुखार को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि गले के संक्रमण और जोड़ों और हृदय वाल्वों की सूजन बंद हो जाए। एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन और सल्फाडियाज का उपयोग संक्रमण का इलाज करने के लिए किया जाता है, जो गले के स्ट्रेप गले और हृदय के वाल्व के संक्रमण का कारण बनता है और गठिया के बुखार को पुनरावृत्ति से भी रोकता है।
यदि बुखार बहुत लंबे समय तक रहा है तो रोगी को प्रतिदिन लेने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं के साथ निर्धारित किया जाएगा, ताकि आमवती बुखार फिर से वापस न आए, जिससे हृदय के वाल्व को नुकसान होने का खतरा कम हो जाता है। एंटीबायोटिक्स अच्छी तरह से काम करने और संक्रमण को रोकने के लिए साबित हुए हैं। संक्रमण के कारण जोड़ों और हृदय की मांसपेशियों की सूजन का इलाज एस्पिरिन जैसे इबुप्रोफेन, नेफ्रोक्सेन आदि के साथ किया जा सकता है। कभी कभी अगर एस्पिरिन काम नहीं करती हैं तो डॉक्टर स्टेरॉयडल और एंटी स्टेरॉयडल दवाएं भी लिख सकते हैं। क्षतिग्रस्त लीक वाल्वों को आमतौर पर तब तक बदलने की आवश्यकता नहीं होती है जब तक की स्थिति बहुत गंभीर न हो जाए और एंटीबायोटिक दवाओं और एस्पिरिन के साथ इलाज नहीं किया जा सके। ऐसे मामलों में वाल्व की मरम्मत के लिए या तो मोटे और अटके हुए फ्लैप को खोलकर या वाल्व के नीचे स्थित टांके के आसपास टांके के खोलकर या वाल्व के बाहर रिंग संलग्न करके सर्जरी से छुटा किया जा सकता है।
दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है, हमें अनुमति दें।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा और प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचारों का सारांश। विदेश मंत्री का कहना है कि वियना वार्ता अच्छी दिशा की ओर बढ़ रही है। इराक में स्वयंसेवी बलों की टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। भारत में मुसलमानों और सिख समुदाय के बीच झगड़ा कराने की कोशिश हुई है और अमरीकी राष्ट्रपति का कहना है कि ट्रंप ने कभी भी जनता की इच्छा का सम्मान नहीं किया। दोस्तों, हमें आशा है कि हमारा ये प्रसारण भी आपको सदा की भांति पसंद आया होगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों एवं प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत कराइएगा। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। तो दोस्तों, इसी के साथ अख्तर अब्बास और साथियों को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔